नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 संसदीय क्षेत्रों के लिए कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने बिहार के प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी। भारत ने जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ा, जनसंख्या का आंकड़ा लगभग 1 अरब 44 करोड़। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और टेनिस में राफेल नाडाल एलेक्स डी मिनाओ के साथ सीधे सेटों में हार के बाद बार्सिलोना ओपन से बाहर। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस बीच लोकसभा के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन होगा। तीसरे चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु की सभी लोकसभा सीटों के लिए इस चरण में मतदान होगा। राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2 और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवार के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, भाजपा की तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और कर्नाटक में कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम तथा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के दयानिधि मारन शामिल हैं। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों पर पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र और सुगम मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राज्य सीमाएं सील कर दी गई है। पहले चरण में 12 महिलाओं सहित कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2,54,00,000 से अधिक है। इनमें 1,33,00,000 पुरुष, 1,20,00,000 से अधिक महिलाएं तथा 304 ट्रांसजेंडर हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 23,651 मतदान केंद्र तथा 719 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा 22,88,000 मतदाता जयपुर लोकसभा क्षेत्र में, जबकि सबसे कम 19,03,000 मतदाता दौसा लोकसभा क्षेत्र में हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
असम में पहले चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों को ईवीएम और अन्य सामग्री के साथ मतदान केंद्रों में भेजा जा रहा है। राज्य के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में कल पहले चरण का मतदान होना है। इस चरण में कुल 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार भुइया ने बताया कि पहले चरण के मतदान के दौरान 14 जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 106 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाएं पहले ही सील कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल लोकसभा के प्रथम चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री राजीव कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही देश में नियमित रूप से सुचारू चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने युवाओं से चुनावी भागीदारी में अपनी जिम्मेदारी का आह्वान किया।
देश के प्रिय मतदाताओं, आज भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण है। मतदान के फर्स्ट फेज का दिन आने वाला है। लगभग 16.5 करोड़ वोटर्स विभिन्न राज्यों में लगभग 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदान की सभी बुनियादी सुविधाओं के प्रबंध किए गए हैं।
प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और वो वोटर्स जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है या जो पीडब्ल्यूडी मतदाता है, वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। वो चाहें तो घर से ही वोट दे सकते हैं।
लोकसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र अकोला निर्वाचन क्षेत्र की एक रिपोर्ट।
अकोला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अनूप धोत्रे को मैदान में उतारा है, जो मौजूदा सांसद संजय धोत्रे के बेटे हैं। लंबी बीमारी के कारण संजय धोत्रे यह चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए उनके बेटे को महायुति गठबंधन से उम्मीदवारी दी गई है। कांग्रेस ने डॉक्टर अभय पाटिल को महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार बनाया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पोते एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन की चर्चा विफल हो गई है और एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर ने इस चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है। वीबीए को उसके पिछले चुनाव गठबंधन सहयोगी ऑल इंडिया मजलिस ए उत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का समर्थन प्राप्त है। अकोला निर्वाचन क्षेत्र में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस क्षेत्र में 18 लाख से अधिक मतदाता है, जिनमें 9 लाख पुरुष है जबकि 9 लाख से अधिक महिला मतदाता है। विदर्भ के अन्य 4 निर्वाचन क्षेत्र बुलढाणा, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम के साथ अकोला निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने की 26 तारीख को मतदान होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
लोक निर्णय 2024,
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
केरल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केवल 8 दिन रह गए हैं। 3 प्रमुख गठबंधन के नेताओं ने राज्य के विभिन्न भागों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रमुख राजनीतिक गठबंधन में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, यूडीएफ और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कन्नूर और कोट्टायम में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। उधर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज पोन्नई निर्वाचन क्षेत्र में 4 स्थानों पर चुनाव रैलियों में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता सुभाषिनी अली कल उम्मीदवारों के पक्ष में कोट्टायम निर्वाचन क्षेत्र में सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 रोड शो करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार श्री अमित शाह कल अपना नामांकन भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर भी आज गुजरात में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल भड़ूच में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। गुजरात में 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में निर्वाचन आयोग के नोटिस का आज सुबह 11 बजे तक जवाब देना है। निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा है कि यदि उसे निर्धारित समय में नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो के चंद्रशेखर राव के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर घाटी में कल देर रात दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा इलाके में आतंकवादियों ने गोलीबारी की और बिहार के एक प्रवासी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकी घटना में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। एक अनुमान के अनुसार देश की जनसंख्या 1 अरब 44 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब 42 करोड़ आबादी के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में जबरदस्त लू चलने की आशंका व्यक्त की है। झारखंड, उत्तरी कोंकण, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी लू चलने का अनुमान है। टेनिस में राफेल नाडाल कल बार्सिलोना में एलेक्स डी मिनाओ के साथ सीधे सेटों में हार के बार्सिलोना ओपन से बाहर हो गए हैं। चौथी वरीयता प्राप्त डी मिनाओ नाडाल को हराकर तीसरे दौर में पहुंच गए। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाडाल साल का अपना दूसरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। शतरंज में भारत के डी गुकेश कल रात टोरंटो में अमेरिका के फैबियानो कारुआना के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से पराजित कर दिया। आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर।
धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने पहले चरण के प्रचार अभियान थपने और आखिरी दिन सभी दलों और उम्मीदवारों की भागम भाग को सुर्खियों में दिया है। हिंदुस्तान के शब्द हैं अंतिम दिन झोंक की ताकत। राजस्थान पत्रिका लिखता है लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुतियों की शुरूआत कल से। जनसत्ता ने लिखा है पहले चरण का प्रचार थमा, 102 सीटों पर कल मतदान, 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। तैयारियों में लगे और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे चुनाव कर्मियों के चित्र भी साथ ही दिए हैं। रामनवमी के अवसर पर कल अयोध्या की साज सज्जा और शंखनाद के बीच रामलला का दिव्य सूर्य तिलक लगभग सभी अखबारों ने मुख पृष्ठ पर चित्र के साथ दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है अयोध्या अब सोती नहीं, दिन जैसी हुई रातें। नवभारत टाइम्स ने जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की चर्चा विस्तार से की है। लिखा है भारत की आबादी सबसे ज्यादा 77 साल में दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार चीन की आबादी 142 और भारत की 121 करोड़। दुबई में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात की चर्चा भी अखबारों ने की है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो गई जितनी वहां औसतन 1.5 साल में होती है। अमर उजाला और हरिभूमि ने लिखा है 75 साल का रिकॉर्ड टूटा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पानी भरने के चित्र के साथ पत्र ने लिखा है भारत आने वाली 28 उड़ानों के साथ कुल 40 उड़ानें रद्द।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 संसदीय क्षेत्रों के लिए कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने बिहार के प्रवासी मजदूर की हत्या की। भारत ने जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ा। जनसंख्या का आंकड़ा लगभग 1 अरब 44 करोड़। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। और टेनिस में राफेल नाडाल एलेक्स डी मिनाओ के साथ सीधे सेटों में हार के बाद बार्सिलोना ओपन से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।